الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے تلے ہوں گے اور بالکل صحت مند ہوں گے اور کوارنٹائن کو خوب جو ہے آپ پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہوں گے. تو جیسا کہ یہ ہم نے اناؤنس کیا تھا، ماشاءاللہ ایک پوری لیکچر سیریز ہماری، 3 لیکچرز کی ایک لیکچر سیریز جس کا نام ہے اے فریش سٹارٹ. دا ریزن آئی چوز دس ٹاپک فار آل آف یو واز کیپنگ ان مائنڈ دا اسٹریسز آف دا 21st century وچ وی آر ڈیلنگ وتھ. دیکھیے، ہم میں سے ہر انسان آج کل جس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے، جن چیلنجز سے گھرا ہوا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جب سے ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ہماری لائفز کو کانکر کیا ہے، میں اس کو کانکر کرنا ہی کہوں گا، کیونکہ اگر آپ اپنے ارد گرد بڑے غور سے دیکھیں تو ہماری لائفز کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ، بہت امپورٹنٹ پارٹ، جس میں ہم بہت سوچ و بچار کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں، جس میں ہم بہت پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، ایکچولی اس امپورٹنٹ پارٹ کو، اس امپورٹنٹ ٹائم سلاٹ کو اس ٹیکنالوجی نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، میں اس وقت ٹیکنالوجی کے تھرو ہی آپ سب سے جو ہے اس وقت مخاطب ہوں، لیکن میرا بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ بیکاز وی آر لیونگ ان سچ ٹائمس، جب ہر چیز ہمارے کلک پہ حاضر ہے اور ہماری بہت سی مصروفیات جو ہے وہ اسمارٹ فونس کے تھرو، لیپ ٹاپس کے تھرو، ہمارے بہت سے کام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہو رہے ہیں، سو ہماری انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. ہماری جو سوشلائزیشن ہے وہ بڑی ڈریسٹیکلی چینج ہوئی ہے. دیکھیں، لاسٹ 10 ایئرس میں جس طرح سے ہماری سائیکالوجی، ہماری سوشلائزیشن، ہمارے طور طریقے چینج ہوئے، میرا نہیں خیال کہ پوری انسانی تاریخ میں اس طرح کے ڈریسٹک چینجز کبھی آئے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ جب بھی اس طرح کی سوشل چینج آتی ہے، اس طرح کی ڈریسٹک چینجز آتی ہیں، تو ان کا کچھ سائیکالوجی پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کا ظاہر ہے ہیومن ہیلتھ پہ کچھ افیکٹ ہوتا ہے، بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل. تو بیکاز ہم ان ساری چیزوں سے گھرے ہوئے اور ہم ان سے نکل نہیں پا رہے، نہ نکل سکتے ہیں، جو سچ بات ہے، کیونکہ اب ہمارا جینا مرنا انہی کے ساتھ، ہم نے انہی ٹیکنالوجی کی چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ہم نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر کام تو لیپ ٹاپس پہ، اسمارٹ فونس پہ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو مینج all the fuss and all the stress which is being caused by our routines. ہماری یہ جو انٹریکشن ہے مشینز اور ہیومن بینگس کی، جو انٹریکشن ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے جو اسٹریس کاز ہو رہا ہے، اس اسٹریس کو مینج کیسے کرنا ہے، ایک تو یہ بہت ضروری، یہ میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا ان شاء اللہ اس لیکچر سیریز میں. دوسرا، آبویسلی جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا، جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے، ہم قیامت ہمارے قریب سے قریب آتی جا رہی ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سائنس بتائے، سائنس آف دی آر، مائنر اینڈ میجر بوتھ، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جیسے جیسے ہیومینٹی قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، اینڈ آف دا ورلڈ کے قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے اس ٹائم کے، تو ظاہر ہے کہ ہیومینٹی پہ بہت سی مشکلات آئیں گی، ہماری لائفز میں بہت سی ڈریسٹک چینجز آئیں گے، اور آج ہماری لائفز اس بات کا ثبوت ہے. دیکھیے، گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے، وہ جو پہلے کوالٹی ہیومن بینگز ہوتے تھے، ہم سنا کرتے ہیں اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنے دادا سے، دادی سے، کہ ان کے دور میں کس طرح کے کوالٹی ہیومن بینگز ہوتے تھے، ان کے دور میں اخلاص کتنا زیادہ تھا، ان کے دور میں جو ہے وہ بے لوس لوگ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. तो जाहिर है कि जब हमारी लाइफ ने इतना ड्रास्टिक चेंज किया, इतनी पलटी खाई कि अब हमारे रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो बजाय के इखलास की बेसिस पे चलने के, अब वो क्राइटेरिया ही कुछ और है, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा है। तो जाहिर है कि जब इंसान अपनी फितरत से हट के एक और सिस्टम, एक और वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करेगा, तो फिर डेफिनेटली उसको स्ट्रेस भी आएगा, डेफिनेटली उसकी लाइफ में उसकी लाइफ अपसाइड डाउन होगी। और फिर जाहिर है कि ह्यूमन बीइंग्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उन वैल्यूज और उन रूल्स के मुताबिक इंटरेक्ट नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी स्टेबल रहती है, तो फिर जाहिर है कि बेसकूनी भी होगी, फिर एक दूसरे से कोफ्त भी होगी, फिर जाहिर है कि ह्यूमन बीइंग्स की सोसाइटी एक जंगल की सोसाइटी बनती नजर आएगी। और अल्टीमेटली फिर होगा यही कि हर बंदा अपनी परवाह करेगा, हर बंदा जो है वो नफसा नफसी का शिकार होगा, हर बंदा जो है वो अपनी ही दुनिया में गुम होगा, उसके पास किसी और चीज का टाइम नहीं होगा। और फिर जब ये होगा तो डेफिनेटली हमारी पर्सनैलिटीज पे इसके बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, फिर रिश्तेदारियां निभाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर जो है वो जाहिर है एक दूसरे के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही हो रहा है, लोग उनकी लाइफ उनके कंट्रोल से ही बाहर जा रही है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि देखिए हर घर में, मैं ये बात एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अल्लाह ताला हम सब के घरों को महफूज रखे, लेकिन एक थोड़ी सी निगाह अगर आप डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह माफ करे, हर घर में एक डिवोर्सी मौजूद है ऑलमोस्ट। यानी जो फैमिली सिस्टम जिस तरह से इस वक्त एंडेंजर्ड है, इस वक्त जिस तरह से फैमिली सिस्टम डेंजर में है हमारा, फिर हर घर में एक ऐसा फर्द मौजूद है जिसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है। मैं तो हैरान होता हूँ कि किसी दौर में ये नाम सुनने को भी नहीं आते थे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो आज हम सुनते हैं, और नौजवानों में। और फिर कुछ इस तरह से हम फितनों में घिरे हुए हैं कि एक आम आदमी तंग आ चुका है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, डिसीजंस गलत हो रहे हैं, लाइफ जो है वो उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से चलाना चाहते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, और मैं कहाँ जा रहा हूं या मैं कहाँ जा रही। और कभी कभी इंसान स्टक फील करता है कि मैं एक जेल में हूं, आसमान जो है वो पूरा आसमान मेरे लिए एक जेल बन चुका है। और अल्टीमेटली फिर लोग डिप्रेशन में जाकर फिर साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, अपनी एम्प्टी लाइव्स को फॉल्स एंटरटेनमेंट से फुलफिल करते हैं। जैसे हम ये, जब मैं भी जाहिर है कि दीन से दूर था, एक वर्ल्ड व्यू मेरा वही वर्ल्ड व्यू था जो एक आम इंसान का वर्ल्ड व्यू होता है, जैसे हमें सिखाया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो मैं भी अपनी लाइफ को कैसे फिल करता था, जाहिर है कुछ गाने सुन के, कुछ एंटरटेनमेंट करके। एंटरटेनमेंट हराम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इशारा इस वक्त जिस एंटरटेनमेंट की तरफ है आप समझ गए हो, फॉल्स एंटरटेनमेंट करके अपने आप को खुश करना, झूठी तसल्लियां देना कि सब ठीक है सब ठीक है, और वक्त जो है वो हाथ से निकलता जाए निकलता जाए। और फिर सिचुएशन ये हो कि हर चीज मुश्किल लगने लगे और हमें एकदम से एहसास हो कि वक्त तो बहुत गुजर गया और मैंने बहुत टाइम जाया कर दिया। तो यही हो रहा है, हम में से हर बंदा जो है वो एक सैराब में है, वो एक मिराज में रह रहा है। और इसका जिक्र अल्लाह सुबहानहु तआला ने सूरह नूर में किया है, बड़ा खूबसूरती से अल्लाह सुबहानहु तआला ने मेंशन किया है। यानी वो लोग जो अल्लाह ताला को नहीं पहचानते, यानी डिसबिलीवर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो कुछ इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि इन अ मिराज, दे आर फॉलोइंग अ मिराज। जैसे एक प्यासा होता है और वो ये समझता है कि पानी के वो करीब जा रहा है, और वो चलता रहता है पानी के पीछे, और उसे मजीद प्यास लगती रहती है, मजीद प्यास लगती रहती है, यहां तक कि वो अल्लाह सुबहाना व तआला को मीट करता है, यानी डेथ आ जाती है और फिर उसके सामने रियलिटी खुलती है। तो ये सारी जो बातें मैंने की, जो तमहीद बांधी आप सबके सामने, वो जरूरी इसलिए थी ताकि मैं आप लोगों को ये वाजे कर सकूं कि ये कोर्स सिलेक्ट करने की जो इंटेंशन है, जो मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह मैं आप सबसे आज बात करूं, वो बात सिंपली ये है कि हमारी लाइव्स ने जो एक पलटा खाया है और हमारी लाइव्स जो अपसाइड डाउन हो चुकी हैं, और हर बंदा इस वक्त स्ट्रेस में मालूम होता है, कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से परेशान है, कोई घरेलू मसले की वजह से परेशान है, कोई रिश्तेदारियों की वजह से परेशान है, कोई मैरिटल इश्यूज की वजह से परेशान है, कोई जो है वो किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व है और परेशान है, निकलना चाहता है, निकलना चाहती है। सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन सच अ वे कि हम लोग अपने आप को मोटिवेट भी करें कि चलो अब फितने में ही रहना है। जाहिर है कि हर जगह आग लगी हुई है, हम चारों तरफ आग से घिरे हुए हैं। ये जो सिस्टम जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो वे ऑफ लाइफ एक मुसल्लत हो चुका है अनफॉर्चुनेटली हम पे, जो सोसाइटी बन चुकी है, अब उसमें वक्त तो गुजारना है, उसमें किसी ना किसी तरह हमने बच कर तो रहना है। तो लेट्स मोटिवेट आवर सेल्व्स, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश बिगिनिंग। जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है सो हो रहा है। हम ये बात नहीं करेंगे क्या हो गया, या हम ये बात नहीं करेंगे कि क्यों इतना बुरा हो रहा है, क्योंकि इसमें हम बहुत बार बात कर चुके हैं। हम ये बात करेंगे कि हम आज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम ये बात करेंगे कि हम अपनी आने वाली जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम ये बात करेंगे कि हम अल्लाह सुभान व तआला को डेस्टिनेशन रखते हुए, गोल रखते हुए, किस तरह से अपना दामन बचाते हुए अपने रब के पास पहुंचेंगे। और यही वो सोच है जिस पे एक्चुअली मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि देखिए, जिंदगी की जो जर्नी है, जिंदगी का जो सफर है, ये बड़ा कठिन है। अब चॉइस आपकी है कि इस कठिन सफर को या अल्लाह के साथ गुजार लें या अल्लाह के बगैर गुजार लें। जैसे मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, एक स्कॉलर है, वो ये कहा करते थे कि जिंदगी में गम तो आने हैं, अब चॉइस आपकी है कि या अल्लाह के साथ गम ले लें या अल्लाह के बगैर गम ले लें। द चॉइस इज योर्स। सो लाइफ इज अ टेस्ट एंड आई बिलीव इस्लाम मेक्स दिस टेस्ट इजी। ये है वो स्टेटमेंट जिस पर इंशाल्लाह मैं इस कोर्स को लेकर चलूंगा कि लाइफ इज अ टेस्ट, बट विद अल्लाह बाय योर साइड एंड विद इस्लाम एज योर वे ऑफ लाइफ, दिस टेस्ट बिकम्स इजी। ये है समझने की बात असल। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि जिंदगी में 100% हैप्पीनेस है और हमने रोजाना खुशी के दिन ही देखने हैं, गम कभी आएगा ही नहीं, ठोकर कभी लगेगी ही नहीं, गलत डिसीजन होगा ही नहीं कभी, या हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा अक्सर नॉवेल्स में, अक्सर मूवीज में आपने जो थीम देखी होगी कि जो हीरो होता है, जो एक डेस्टिनेशन पर, एक टास्क पर पहुंचना चाहता है, एक टास्क को कंप्लीट करना चाहता है, तो रास्ते में आपका क्या ख्याल है कि उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, उसको कोई ब्रूजेस नहीं लगती, उसको कोई इंजरी नहीं होती, उसके कोई एनिमीज नहीं होते, उसके कोई मुखालिफ नहीं होते, उसको कोई ठोकर नहीं लगती, उससे कोई गलती नहीं होती, सब कुछ होता है, गलती भी होती है। अनटिल वो बॉलीवुड मूवी हो, क्योंकि बॉलीवुड में हीरो को परफेक्ट दिखाते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन की। उसे ठोकरें भी लगती हैं, उससे गलत डिसीजंस भी होते हैं, उससे बहुत कुछ गलत भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली जख्मी होकर, इंजर होकर, घुटनों पर आकर, घुटनों पे चलकर, किसी ना किसी तरह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो यही असल में बात है कि हमने भी अल्लाह सुभान व तआला तक पहुंचना है, और हमारी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में अल्लाह सुभान व तआला तक पहुंचे, और जो भी लाइफ में हमें टेस्ट और ट्रायल्स आ रहे हैं, जो भी लाइफ में डिफिकल्टीज हम पर आ रही हैं, हम वो एटीट्यूड्स अडॉप्ट करें कि हम उन डिफिकल्टीज से बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेस के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ उन डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को फेस करते हुए निकलें और अपने रब तक पहुंचे। ये है असल में इस्लाम का फलसफा, और यही है बेसिकली इस कोर्स में वो मेन बात जो इंशाल्लाह जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके आगे चलूंगा। तो जाहिर है चूंकि इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात होगी, इसमें होप की बात होगी, इसमें मोटिवेशन की बात होगी, तो मैं साइकोलॉजी से भी कुछ बातें आपके लिए कोट करूंगा। आज की जो क्लास है, इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो आप कह लें कि मेरा इस क्लास का सबसे मेन पॉइंट है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन एक तैयार की है, मैं आप सबसे प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा और फिर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्स का नाम है अ फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश बिगिनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कि द रीजन हमारी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज आती हैं और हम उन डिफिकल्टीज से डील करने में फेल हो जाते हैं, या हम जो है वो जाहिर है कि उन डिफिकल्टीज की वजह से बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसकी मेन वजह मेरे नजदीक, और आप इससे एग्री करेंगे इंशाल्लाह, जब आप इस बात का जायजा लेंगे आप इससे एग्री करेंगे, इसकी मेन वजह मेरे नजदीक हमारा रॉन्ग वर्ल्ड व्यू है। बहुत जरूरी है कि हम अपना वर्ल्ड व्यू कुरानो हदीस और अल्लाह सुबहाना व ताला के बताए हुए जो उसूल हैं, जो अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें लेंस अता फरमाया, उस लेंस के मुताबिक अपना वर्ल्ड व्यू बनाए। जब हमारा वर्ल्ड व्यू ही फॉल्स होगा, जब हमारा दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट ही गलत होगा और दुनिया की जिंदगी के बारे में कॉन्सेप्ट ही गलत होगा, तो फिर मैं आपको ये गारंटी से कह देता हूं कि फिर दुनिया आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, फिर जो है वो जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर डिफिकल्टीज से मुकाबला करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आप सबसे कुछ इंशाल्लाह सवाल भी पूछता हूं, जैसे कि स्लाइड्स में आप लोग देख रहे हैं कि आज की जो 21st सेंचुरी की अक्कासी की हुई है कि टाइम में भी बरकत नहीं है कहीं से, टाइम में कुछ लोग जो है वो जाहिर है कि टाइम उनके पास नहीं है इतना, तो इस हवाले से परेशान है कि मेरे पास टाइम ही नहीं किसी चीज का, दीन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, लेट से कुछ लोगों के पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, लिटरली वो ये कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, हम कहाँ से करें, दुनिया में इतना खप गए ना, दुनिया की मुश्किलात में, पैसे कमाने में, जाहिर है माश कमाने में इतना खप चुके हैं, कुछ लोग को वरीज ने, स्ट्रेस ने घेरा हुआ है, कुछ लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेरा हुआ है, कुछ लोग को उनके फैमिली ट्रबल्स ने घेरा हुआ है, कुछ लोग जो है वो लिमिटेड हैं, लिमिटेशंस ने उन्हें घेरा हुआ है, किस तरह की लिमिटेशंस ने, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं उनके सामने, उनकी माइंड की लिमिटेशंस हैं, कुछ लोग आजाद होना चाहते हैं लेकिन आजाद नहीं हो रहे, कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड देन जाहिर है एंग्जाइटी कितना कॉमन हो चुकी है हमारे माशरे में, एंग्जाइटी, लोग को पैनिक अटैक्स होते हैं, लोग को फिजिकल जो है वो सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के, मिसाल के तौर पे हार्ट बीट तेज होना, अचानक से पैनिक हो जाना, स्ट्रेस को सही से मैनेज ना कर पाना वगैरह वगैरह, तो ये सारी सौगातें 21st सेंचुरी की सौगात है, और उसकी वजह मैंने शुरू में बयान की है कि जाहिर है कि जब टेक्नोलॉजी से हमारा रिलेशन बढ़ेगा तो ये सारी चीजें एक आउटकम है। तो वंस अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं आपको एक्सपर्ट्स की बातें यहां पर कोट कर रहा हूं। सो इस स्लाइड की तरफ अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको इस वक्त एक बस दिखा रहा हूं, ये बस बहुत स्पीड पे जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और इमेजिन करें कि इस बस की ब्रेक फेल हो जाए अचानक से और आप इस बस में बैठे हुए हैं, तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप सबसे चाहिए, नॉट इन द लिटरल सेंस, ऑब्वियसली मैं हर एक के कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकूंगा, मुझे आप सबसे सिर्फ एक जो है वो बात का जवाब चाहिए जो आप सोचें, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको जवाब खुद दूंगा। टेल मी कि अगर इस बस की ब्रेक फेल हो जाए और आपकी नजर एक ऐसे शख्स पे पड़े जो बहुत काम और कंपोज्ड बैठा हुआ है, बाकी सब चीखे मार रहे हैं कि लो जी ब्रेक तो हो गई फेल और अब ये बस कहीं जाकर लगेगी, और जब ये लगेगी तो फिर वो इस पैनिक को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जाहिर है पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो वो पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं, और ये बड़ा पैनिक सिचुएशन होता है, अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त है, मैं बस एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आप एक शख्स को देखते हैं जो बहुत कंपोज और काम बैठा हुआ है, क्या वजह है वो काम और कंपोज बैठा हुआ है? ये वो शख्स है जिसके पास ये नॉलेज है कि अगर इस बस की ब्रेक फेल हो गई तो उसका बैकअप क्या है। तो बात समझाने का आपको ये मकसद है कि दिस मैन, दिस पर्सन इज काम इन दिस बस बिकॉज ही हैज नॉलेज ऑफ द बस। तो मुझे खुद बताइए कि जिस बंदे को जिंदगी का नॉलेज ही नहीं है, जिंदगी की नेचर का, नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, नेचर ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको बैकअप्स ही नहीं पता, जिसको ये ही नहीं पता कि जब मेरी जिंदगी की बस की ब्रेक्स फेल हो जाएंगी तो मैंने कौन सी मेथडोलॉजी लगानी है, मैंने कौन सा मैकेनिज्म लगाना है कि मैं एक्सीडेंट से बच जाऊं, ये बस किसी तरह कहीं पर जाकर एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं पर जाकर लग ना जाए। जब तक उस बंदे को पता ही नहीं है तो फिर वो कैसे बचेगा, वो तो पैनिक ही होगा, वो तो फिर काम कैसे रहेगा। तो यही हो रहा है हमारी जिंदगी में, हमारी बस की जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो रही हैं और हम पैनिक हो रहे हैं, हम जो है वो शोर मचा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि शोर मचाने से, पैनिक होने से हमारी जो बस की ब्रेकें फेल हुई हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ब्रेक जो फेल हुई है उसको ठीक किया जाए, उसका कोई बैकअप सिस्टम निकाला जाए और अपनी जो बस है उसको राइट ट्रैक पे लाया जाए, उसको एक फ्रेश स्टार्ट करवाया जाए, तो उसके लिए देखिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। किस चीज की नॉलेज का, कि मेरा वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए, जिंदगी अल्लाह ताला ने क्या बताया है दुनिया की जिंदगी के बारे में, और जो अल्लाह ताला ने बताया है दुनिया की जिंदगी के बारे में, जो हकीकत हमसे वाजे की है, क्या हम उसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं या हमने अपना एक फॉल्स वर्ल्ड व्यू बना लिया है, या हम ये सोची बैठे हैं कि हम सिर्फ दुनिया में ही जीने आए हैं और हम दुनिया की ही जिंदगी बसर करने आए हैं और हमने कहीं मरना भी नहीं है, मरकर हमने अल्लाह के सामने खड़े भी नहीं होना है, और जिंदगी टेस्ट ट्रायल कोई नहीं है, जिंदगी बस खा ले पी ले जी ले का नाम है, जैसे कोका कोला सिखाता है, खा ले पी ले जी ले। तो क्या जिंदगी खा ले पी ले जी ले का नाम है? अगर तो हम जिंदगी इस तरह बसर कर रहे हैं तो फिर जब ब्रेक फेल होगी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो समझने की बात यह है कि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, मैं आप सबसे मजीद बात वाजे करता हूँ, वो ये है कि हमारा वर्ल्ड व्यू बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे मैंने इस वक्त आपको ऐनक दिखाई है, इस ऐनक के उस पार अगर आप देखें कि विदाउट द ग्लासेस धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन विद द ग्लासेस बहुत क्लियर नजर आ रहा है। दिस इज व्हाट इस्लाम डज, दिस इज व्हाट द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ डज टू अस। जब आप वो लेंस पहन लेंगे, जो लेंस कुरान मजीद का लेंस है, जो लेंस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, जो सीरा है, जो टीचिंग्स हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अहादीस हैं दुनिया की जिंदगी के हवाले से, जो फलसफा है जिंदगी का जो इस्लाम ने हमें दिया, तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। और जब पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी तो ये दुनिया के स्ट्रेसेस, ये दुनिया की परेशानियां, ये बहुत छोटी मालूम होगी। क्या वजह है कि सहाबा बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाती थी, फाइनेंशियल लॉस हो जाता था, दुनियावी लॉस हो जाता था, फैमिली में कोई लॉस हो जाता था, क्या वजह थी कि वो इतना एक्सट्रीम एंग्जाइटी या एक्सट्रीम स्ट्रेस में नहीं जाते थे? कुछ देर के लिए तो जाहिर गम आता है, वो नेचुरल है, इंसान थे वो, लेकिन क्या वजह है कि वो अपने मिशन में लगे रहते थे और वो इस चीज की केयर नहीं करते थे कि दुनिया में कोई नुकसान हो गया तो बस अब सर पकड़ के बैठ जाओ, या बस अब डीमोटिवेटेड होकर बैठ जाओ, या बस अब ये समझ के बैठ जाओ कि जिंदगी खत्म होगी? क्या वजह, उनके पास क्या लेंस था, उनके पास क्या अंडरस्टैंडिंग थी दुनिया की जिंदगी की कि वो आगे ही बढ़ते थे, वो कभी नहीं रुकते थे, वो मंजिल की तरफ गामजन थे। फाइनेंशियल इश्यूज उन्हें मंजिल की तरफ गामजन होने से नहीं रोकती थी, फैमिली इश्यूज उन्हें मंजिल की तरफ गामजन होने से नहीं रोकती थी। क्या वो लेंस थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या जो है वो उन्हें वो लेंस दिया हुआ था जिसकी वजह से देवर सेटिस्फाइड विद लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड? तो इंशाल्लाह ताला हम उस लेंस की बात करेंगे, हम उस वर्ल्ड व्यू की बात करेंगे जो कुरानिक वर्ल्ड व्यू। उससे पहले मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, बेसिकली देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल हु डिटेस्ट द वर्ल्ड। तीन तरह के लोग होते हैं और ये उलमाए कराम के अकवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, ये मैं उलमा की बयान करदा कैटेगरीज आपसे बयान कर रहा हूं। दुनिया की जिंदगी कठिन है और जाहिर है कि मोमिन का हाल ये होता है, जैसे इब्ने मसूर रज़ियल्लाहु ने कहा ना कि मोमिन के दिल में गम होता है, और वो गम की बहुत सी वजूहात होती हैं। एक गम तो ये कि ये जो दुनिया की जिंदगी है ये असल जिंदगी जाहिर है नहीं है, ये एक टेस्ट है, ट्रायल है, कठिन है, तो जाहिर है कि बहुत सी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं, नफ्स को मारना पड़ता है, अपने नफ्स को डिसिप्लिन करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को जो है वो ख्वाहिशात के घोड़े को लगाम लगानी पड़ती है। तो उस वजह से बिलीवर जो है जाहिर है कि वो इस दुनिया को असल जिंदगी तसव्वुर नहीं करता, और उसकी नजर जो है वो आखरत पर होती, उसकी नजर अल्लाह सुभाना व तआला पर होती। तो ये जो पहली टाइप है जिसकी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, दीज आर द पीपल हु डिसलाइक दिस ट्रांसिएंट वर्ल्ड एंड लॉन्ग फॉर दैट व्हिच इज विद अल्लाह ऑफ रिवॉर्ड एंड हु लव टू मीट अल्लाह। ये वो टाइप है जो दुनिया को नापसंद करते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, यानी जैसे कुछ लोग जो है ना वो दुनिया से वैसे ही नफरत करते हैं, जिंदगी से वैसे ही नफरत करते हैं, वो कहते हैं मैं अपने आप को वैसे ही मार दूं, वो वाली टाइप नहीं। ये दुनिया को नापसंद इस सेंस में करते हैं कि इन्हें दुनिया की हकीकत पता है, ये उन अहादीस से वाकिफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो रोड पे एक मरी हुई बकरी, उस बकरी का जो ढांचा था या जो भी वो जिस भी हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी वो बकरी, उसका कारकैस, तो वो बकरी सहाबा ने जब देखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस गोट, विल समवन परचेज इट और ईट इट? तो सहाबा ने कहा कि बिल्कुल नहीं या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बकरी से भी ज्यादा औकात नहीं है दुनिया की जिंदगी की, अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने दुनिया की। और फिर बहुत सी मिसालें हैं, आप किताबु जुहद पढ़ेंगे मिशकात की, आप किताबु जुहद पढ़ेंगे अहदीस की किताबों में जो जुहद व तकवा के हवाले से अहदीस है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये है असल में मामला, ये है वो दुनिया जिसके पीछे हम अपना दीन, ईमान, अपने रिलेशनशिप्स, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है वो दुनिया जिसके पीछे हम पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, किस किस को खुश करते हैं अल्लाह को नाराज करके, किस किस की जो है हम वो फेवर लेना चाहते हैं अल्लाह ताला को डिसप्लीज करके, ये है इस दुनिया की औकात। तो पहली टाइप वो लोग हैं जो दुनिया की इस हकीकत से वाजे हैं और वो दुनिया को पसंद नहीं करते। स्कॉलर्स ने जुहद व तकवा के लोगों के बारे में बात की है कि दे डिटेस्ट द वर्ल्ड, बट येट इवन आफ्टर डिटेस्टिंग द वर्ल्ड, दुनिया को नापसंद करने के बावजूद वो दुनिया में सब्र के साथ, शुक्र के साथ जिंदगी बसर करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो अल्लाह ने हलाल करार दिया उसको अडॉप्ट करते हैं, जो हराम करार दिया उसको अवॉइड करते हैं। ये हैं वो लोग बेसिकली जिनके लिए आखिरत में बहुत रिवॉर्ड है, क्योंकि दुनिया की हकीकत से वाज़े और इनका फोकस आखिरा है, इनका फोकस अल्लाह सुभान व तआला है। तो ये पहली टाइप। दूसरी टाइप जो डिटेस्ट करते हैं वर्ल्ड को, वो वाली टाइप है जो हम में से, जो जाहिर है बहुत से लोग की एक सोच है, दे डिटेस्ट दिस वर्ल्ड नॉट बिकॉज ऑफ द हेयर आफ्टर, इसलिए नहीं नापसंद करते दुनिया को कि हेयर आफ्टर बहुत बेहतरीन है, बल्कि बिकॉज दे थिंक दैट देयर शेयर ऑफ इट इज वेरी लिटिल एंड दैट अदर्स आर बेटर ऑफ देन देम, बिकॉज वो तकदीर से नाखुश है, वो कंपैरिजन करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो दुनियादार लोग हैं, उनका क्राइटेरिया दुनिया है, उनका सक्सेस का क्राइटेरिया मटीरियलिस्टिक है, चूंकि उनका सक्सेस का क्राइटेरिया मटीरियलिस्टिक है, वो हर वक्त दूसरों की तरफ देख कर ना उम्मीद होते, वो हर वक्त ये देख कर कि मुझे अल्लाह ने नहीं दिया, उसको वाफर रिस्क दिया, उसको ये दिया है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, उसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उसके पास फलानी डिग्री है, उसके पास फलाना स्किल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हर वक्त इनको इन टेंशन और इन स्ट्रेसेस ने घेरा होता है। इनमें से कुछ स्ट्रेसेस नेचुरल हैं, आ जाते हैं, इंसान है, लेकिन चूंकि हर वक्त कंपैरिजन चल रहा होता है तो ये दुनिया की जिंदगी से तंग आ जाते हैं। इनके तंग आने की वजह मटीरियलिस्टिक रीजंस हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है वो बड़ा कम है इस दुनिया में, बाकियों को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। और इस के हवाले से मैं एक आयत इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा पहले हम तीसरी टाइप जो है वो डिस्कस कर लें। तीसरी जो टाइप है, दे आर दोस पीपल हु हेट दिस वर्ल्ड बिकॉज दे हैव बीन फेस्ड विद अ ग्रेट डील ऑफ ट्रायल, स्ट्रेस एंड एग्जॉस्टन इन इट। ये वो लोग हैं जिन्हें बड़ी मुश्किलात आई, जिनको बहुत से टेस्ट और ट्रायल्स और स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ा, ये एग्जॉस्ट हो गए। किस वजह से एग्जॉस्ट हुए? अपनी गलत डिसीजन मेकिंग्स की वजह से, अल्लाह को इग्नोर करके, दीन को इग्नोर करके। वो टाइम जो टाइम अच्छे कामों में लगाना चाहिए था उसको ज़ाया करके, जो भी था, जिस भी वजह से इन पे स्ट्रेसेस आए, इन पे मुश्किलात आई, तो अब ये इतने थक गए, इतने थक गए, इतने खप गए हैं, ये इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं, ये इतने कड़वे हो चुके हैं दुनिया की जिंदगी के स्ट्रेसेस के आगे, उनकी मुश्किलात के आगे, कि अब इनको दुनिया की जिंदगी से वैसे ही नफरत है। ये है वो टाइम जो एक्चुअली सुसाइड की तरफ भी जाती, जो इतने नाउमीद हो जाते हैं दुनिया से, जो इतने नाउमीद हो जाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं यहां कर क्या रहा। तो दे दीस सॉर्ट ऑफ पीपल दे कमिट सुइसाइड एज वेल। हैविंग सेड इट, डिप्रेशन एक अलग मसला है, एक बीमारी है। डिप्रेशन मोमिन को भी हो सकता है। मैं यहाँ पे डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उस स्टेट की बात कर रहा हूँ कि ये इतना तंग आ जाते हैं जिंदगी से कि फिर जाहिर है कि ये दुनिया की जिंदगी को कोसने लग जाते हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल है भाइयों और बहनों कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या हम पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हम दुनिया से बस निकलना चाहते हैं कि या अल्लाह किसी तरह दामन बचा कर, आंचल बचा के, इन टेस्ट और ट्रायल्स के आगे जो है वो हमें हिम्मत अता फरमा, हम आपकी इबादत करें, हम आपके अहकामात पे चलें, जो भी चैलेंजेस हैं या रब हमें हौसला दीजिए, हमें वो अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि हम इन टेस्ट और ट्रायल्स से अच्छी तरह डील करके आप तक पहुँचें। हमारी नज़र हेयर आफ्टर पे है, हमारी नज़र दुनिया पे नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, यहां से ये मत समझ लीजिएगा कि मैं रहबानियत की तालीम दे रहा हूँ, ये रहबानियत की बात नहीं हो रही है। ये जुहद व तक्वा का एक लेवल होता है जब इंसान इस दुनिया से उदास हो जाता है और उसकी नजर अल्लाह ताला के अल्लाह ताला पर होती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर लव्स टू मीट अल्लाह, अल्लाह लव्स टू मीट हिम और हर। जो कोई अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करता है, अल्लाह ताला उससे मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात करने को डिटेस्ट करता है, अल्लाह उससे मुलाकात करने को डिटेस्ट करता है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से मुलाकात के मुंतजर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गोल्स ये बनाए हुए हैं कि मैंने जो महल लेना है जन्नत में वो मैंने नबियों के पास लेना है, वो मैंने सहाबा के पास लेना है, ताकि मैं उनकी कंपनी में बैठूं उस दूसरी दुनिया में जाकर जो कि उखरवी जिंदगी है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी, दुनिया की जिंदगी आखरत को फोकस रख के गुजारते हैं, इनकी सारी रूटीन आखरत को प्रायोरिटी रखते हुए होती है। ये हैं असल में वो लोग जो दुनिया की जिंदगी से थोड़े बेजार हैं, लेकिन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ये बस कहते हैं किसी तरह गुजरे और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंचे। तो इन्हीं के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इनकी तारीफ भी की, अल्लाह तआला ने, कि ये सब्र करने वाले लोग हैं, साबिरीन है, और इनको बशारत है ये सब्र करने वालों को, क्योंकि जब भी इन पर कोई मुसीबत आए तो ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं कि हमने जाना ही अल्लाह की तरफ है पलट के। ये है वो फलसफा। इस फलसफे को लेकर आप जिंदगी में चलेंगे कि मेरा फोकस हेयर आफ्टर है। यकीन कीजिए, जब आपका फोकस हेयर आफ्टर बन गया, जब आपका फोकस जन्नत बन गया, ये क्या रह जाएंगी दुनिया की जो मुश्किलात, ये सास बहू के झगड़े क्या मायने रखते हैं आखरत की जो मुश्किलें हैं उनके आगे, ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, ये क्या मायने रखते हैं आखरत की प्रॉब्लम्स के आगे। आखरत में अगर आमाल ठीक ना हुए, आखरत में अगर जो है वो हम बगैर अच्छे आमाल के आए, तो फिर उनके सामने ये प्रॉब्लम्स क्या मायने रखते हैं। और जब डेस्टिनेशन अल्लाह है, तो फिर जिंदगी के टेस्ट और ट्रायल्स और ये मुश्किलात झीलने में क्या मसला है। जब एंड रिजल्ट अल्लाह है, जब एंड रिजल्ट अल्लाह का चेहरा है, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के चेहरे को पाना चाहते हैं, तुम्हारे रब के चेहरे को ये लोग पाना चाहते हैं, जब एंड रिजल्ट इतना खूबसूरत है, तो फिर ये टर्मोइल, ये टेस्ट, ये फितना और फिर ये मुश्किलात, और फिर ये टॉयल, ये स्ट्रगल, इट ऑल मेक्स सेंस, इट ऑल मेक्स परफेक्ट सेंस। जब एंड रिजल्ट मेरा रब है, जब एंड रिजल्ट सहाबा की कंपनी है, जब एंड रिजल्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी है, जब एंड रिजल्ट जो है वो जन्नत के बाजार है, जब एंड रिजल्ट जो है वो एक ऐसी जिंदगी है जहां पर खुशी ही खुशी है, जहां पर कोई टेस्ट और ट्रायल नहीं है, तो फिर 70 80 साल, 60 साल, 65 साल, जितनी भी अल्लाह ने जिंदगी दी है, गुजर ही जाएगी। अच्छे से गुजार लो, शुक्र गुजारी से गुजार लो, अल्लाह का शुक्र करके गुजार लो। ये हैं वो लोग, पहले वाले। दूसरे वाले, क्या हम इनमें तो फॉल नहीं करते, जिन्होंने दुनिया को ही सारा का सारा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, प्रायोरिटी दुनिया है। जैसे आजकल हमारा जिस जिन जिन उसूलों पे हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि नमाज छोड़ी जा सकती है, लेकिन ट्यूशन सेंटर नहीं छोड़ा जा सकता, स्कूल की क्लास नहीं छोड़ी जा सकती, फजर जो है वो मिस की जा सकती है, लेकिन स्कूल से लेट नहीं होना। ये हमारी तालीम है बच्चों के हवाले से और हमारे हवाले से, कि बॉस नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज होता है तो कोई बात नहीं। ये है हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका। बॉस को खुश करने के लिए, किसी इंसान को खुश करने के लिए हम रातें भी जागेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन बहुत क्लियर है ना, वो मिराज, वो सैराब, वो फॉल्स इमेज, वो वर्ल्ड व्यू, फॉल्स वर्ल्ड व्यू जो मूवीज ने दिया हुआ है, जो इंसानों ने दिया हुआ है, वो हमारे सामने बहुत एक जाहिर है कि हमें बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो क्राइटेरिया गलत है, वर्ल्ड व्यू गलत है, दुनिया क्राइटेरिया है, सक्सेस का पैमाना दुनियावी है। तो जब सक्सेस का पैमाना जो है मटीरियलिस्टिक है, दुनियावी है, तो फिर ऐसे लोग भी थक जाते हैं आखिरकार। आपने कितने लोगों को देखा होगा, अल्लाह ने उनको बहुत दिया, उनके पास बड़ा कुछ है दुनिया का, उनके पास लैंड क्रूजर्स हैं, प्राडो हैं, उनके पास पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं, लेकिन हर वक्त टेंशन में, हर वक्त एक बेचैनी है, हर वक्त एक एंग्जाइटी है, हर वक्त चेहरे से जो है वो एक बेसुकूनी सी टपक रही है। इल्ला ये कि अल्लाह ने उन्हें बहुत भी दिया और वो शुक्रगुजार भी हैं, जो पहली कैटेगरी में एक्चुअली फॉल करते हैं, कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी बहुत दिया और इंशाल्लाह आखिरत में भी बहुत देगा। तो क्या वजह है कि इतना होने के बावजूद ये बेचैनी, ये परेशानियां, कभी औलाद की तरफ से परेशानी आ रही, कभी रिश्तेदार की तरफ से परेशानी आ रही, कभी इम्प्लॉयज की तरफ से परेशानियां आ रही? तो वजह वही है भाइयों और बहनों, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, वर्ल्ड व्यू बता दिया हमें हमारे नबी ने। वो वर्ल्ड व्यू क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर मेक्स आखरा हिज कंसर्न, जो कोई हेयर आफ्टर को, आखरा को कंसर्न बनाता है, प्रायोरिटी बनाता है, अल्लाह विल गैदर हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को समेट लेगा। ही विल रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल रन आफ्टर हिम, दुनिया उसके पीछे भागेगी, माल उसके पीछे भागेगा, लोग उसके पीछे भागेंगे, लोग उसकी इज्जत करेंगे। ये है हेयर आफ्टर को कंसर्न बनाने का रिवॉर्ड, कंसर्न। अब हेयर आफ्टर को कंसर्न से क्या मुराद है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जो लोग हेयर आफ्टर को कंसर्न बनाए हुए, उनकी रूटीन इस बात की गवाही देगी। मिसाल के तौर, जिलहिज के 10 दिन आ गए, अब उनकी रूटीन इस बात की गवाही देगी कि जिलहिज के 10 दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर इस बात से वो नेग्लिजेंट हैं इबादात के हवाले से, अज़कार के हवाले से, नमाजों के हवाले से, तो फिर ये वो फिर दूसरी वाली कैटेगरी है जिससे अल्लाह हमें बचाए, हम इससे पनाह मांगते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? Whoever makes the world his or her concern, और जो कोई दुनिया को कंसर्न बना लेगा। कंसर्न बनाने से ये मुराद नहीं है कि दुनिया कमाएगा, दुनिया कमाने में कोई हर्ज नहीं है, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है। कंसर्न बनाने से मुराद है कि टॉप प्रायोरिटी, दीन को भी इग्नोर करके और स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत को इग्नोर करके, रिलेशनशिप्स को इग्नोर करके, जो सिर्फ दुनिया के पीछे जाएगा, जो सिर्फ पैसा कमाना चाहेगा, जो सिर्फ फॉल्स एक कह लें रिस्पेक्ट चाहेगा, जो चर्चा चाहेगा दुनिया में, हर चीज को इग्नोर करके, तो फिर उसके हवाले से क्या है, अल्लाह विल स्कैटर हिज अफेयर्स, अल्लाह उसके अफेयर्स को स्कैटर कर देगा। उस शख्स के पास टाइम ही नहीं होगा नेकी का, कुछ करने का टाइम नहीं होगा। कभी कहीं किसी चीज ने पकड़ लिया, कभी किसी परेशानी ने घेर लिया। और व्हेन अल्लाह विल स्कैटर हिज अफेयर्स, ही विल रन आफ्टर द दुनिया एंड दुनिया विल रन अवे फ्रॉम हिम। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, उनका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। दुनिया के वो पीछे भागेगा, दुनिया उसके आगे आगे भागेगी। यानी वो कमाना चाहेगा दुनिया को बहुत, लेकिन फिर भी उसके हाथ नहीं आ रही होगी दुनिया। और फिर वो हदीस कि ओनली द सैंड द मड विल फिल द बेली ऑफ सन ऑफ एडम, सिर्फ मिट्टी आदम के बच्चे का पेट भरेगी। तो ये जो कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी है, कभी इसको आप पढ़िएगा। हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर कंज्यूमरिज्म हमारे एक एक बच्चे को, एक एक फर्द की रगों में इस वक्त खून की तरह दौड़ रहा है। कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी क्या है? ये कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी कि शॉपिंग कर लो, महीने में 10 कपड़े बना लो, फलानी ने 5 कपड़े जोड़े बना लिए, नया ब्रांड खुला है उस ब्रांड के कपड़े ले लो, कहीं मिस आउट ना हो जाए, फलाने ब्रांड के कपड़े ले लो कहीं वो मिस आउट ना हो जाए, सेल लगी हुई है कहीं सेल मिस आउट ना हो जाए, और मिस आउट हो जाए तो फिर एक सेंस ऑफ डेप्रिविएशन, फलाना प्रोडक्ट आया फलाना प्रोडक्ट ले लो, ये आया ये ले लो, वो आया वो ले लो। तो कंज्यूमर बन चुके हैं हम अब्दुल्ला नहीं है, हम कंज्यूमर हैं, हम अल्लाह के अब्द नहीं हैं, हम जो है असल में वो ग्रीडी कैपिटलिस्ट उनके बंदे बन चुके हैं। वो जिस कीमत में हमें बेचना चाहते हैं हम खरीदते हैं, हम कुछ भी करके खरीदते हैं, हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, उधार भी मांगते हैं। हम जो है वो लोगों को अपनी फॉल्स शानो शौकत दिखाने के लिए जो है वो फिर जाहिर है गलत काम भी करते हैं, उसके लिए फिर सारा फोकस हमारा पैसा बन जाता है। यार पैसा कमाओ पैसा कमाओ, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए ताकि मैं ये भी खरीदूं, ताकि मैं वो भी खरीदूं, ताकि मेरे घर में ये वाला प्रोडक्ट आए, ताकि मेरे घर में फलाने शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग होकर आए, ये वाली चीजें आए। तो जाहिर है कि फिर दुनिया कंसर्न बन गया ना, और जब दुनिया कंसर्न बन गया, ये सोच बन गई, कंज्यूमरिज्म ने आप लोगों को रूल कर लिया, तो फिर सुकून कहाँ आएगा? फिर तो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस ही आएगी ना, क्योंकि फिर हमारी पर्सनैलिटी बहुत खोखली बन जाएगी। तो वही बात है कि हम सब सोने के पिंजरे में बंद हैं। हम समझते हैं ये पिंजरा बड़ा खूबसूरत है क्योंकि है ये सोने का, मैंने परचेज किया है बड़े पैसे लगा के, लेकिन है तो पिंजरा। तो अगर बहुत से लोगों को सोने का पिंजरा ही कबूल है तो फिर सो बेट, अल्लाह ताला फिर यही तो कहते हैं कुरान में, जिसको दुनिया चाहिए मैं दे दूंगा, मैं नहीं रोकूंगा, जो दुनिया का तलबगार है मैं दुनिया उसे दे दूंगा, ये अल्लाह का वादा है, लेकिन फिर आखिरत में उसका कोई शेयर नहीं होगा। फिर वो हमसे शिकायत ना करे कि बेसकूनी क्यों है, फिर वो हमसे शिकायत ना करे क्यामत वाले दिन, क्या है मेरे रब मैं किस तरह इस पोजीशन पे पहुंच गया, मैं किस तरह यहां तक पहुंच गया कि मेरे को अच्छे अमाल ही नहीं है। तो इस हालत से हमें पनाह मांगनी चाहिए। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहले सेशन में मैं इसी तरह आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करते, कहीं हम अब्दुल्ला की बजाय कंज्यूमर्स तो नहीं है। इस पर आप सोचिएगा बहुत अच्छे से। तीसरी कैटेगरी अल्लाह बचाए कि बिल्कुल ही बस हो जाए, यानी मत बज जाए इंसान की, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि उसकी मत ही बज गई, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की मुश्किलात आती रहें आती रहें, एक मुश्किल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हमारे गलत डिसीजंस की वजह से, हमारे गलत अमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, कहीं ऐसा ना हो आती रहें आती रहें, यहाँ तक कि हम कहें कि यार बस अब मार दो मुझे, या मुझे मौत आ जाए या मैं वैसे ही मर जाऊं। इतना डिमोटिवेटेड हो जाए हम, इतना डिमोटिवेटेड हो जाए कि बस अल्लाह बस हो चुकी है। लेकिन एक तो बस है कि जैसे अंबिया पे बहुत टेस्ट ट्रायल्स आए, तो उन्होंने भी अल्लाह से कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी? अंबिया और उनके हवारीन ने ये अल्फाज कहे, सूरह अल बकरा में है कि अल्लाह ने उनको टेस्ट किया, बहुत सख्ती से टेस्ट किया, यहां तक कि उनके मुंह से निकल गया कि वेयर इज द हेल्प ऑफ अल्लाह, कहाँ है अल्लाह की मदद, कब आएगी अल्लाह की मदद? और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की मदद करीब है। ये एक अलग कैटेगरी है। यहां पर मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने अपने गलत वर्ल्ड व्यू की बेसिस पे गुनाह किए, गलत डिसीजंस लिए, गलत लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया और अब बेचारे थक चुके हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो ये हमारा पहला टास्क है पहले लेक्चर का, कि हमने ये इंश्योर करना है कि हम पहली कैटेगरी में आ जाए। और पहली कैटेगरी में आने के लिए मेहनत है जाहिर, पहली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाएंगे, पहली कैटेगरी में आने के लिए फिर जाहिर है कि कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो नहीं होगा, एक कोर्स अटेंड करके भी नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम सब पहली कैटेगरी में, मैं या आप, ये कोर्स अटेंड करके आ जाएंगे या कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करके आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, जो रियलिस्टिक बात है, रियलिस्टिक बात ही करनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर शिफ्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन ऑर्डर टू बी अमंग्स द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जो जिंदगी, दुनिया की जिंदगी की हकीकत से वाजे हैं, पसंद नहीं करते, उनकी कोशिश बस यही है कि किसी तरह इसको गुजर बसर करके अल्लाह तक पहुंच जाया जाए। उनका गोल बहुत हाई है, मैंने जैसे आपको जिक्र किया, अगर इस कैटेगरी में आना है तो उसके लिए एक प्रॉपर चेंज इन लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट, देयर शुड बी अ शिफ्ट, अ पैराडाइम शिफ्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, देयर शुड बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन द लाइफस्टाइल एंड इन द माइंडसेट ऑफ यू। माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं एक आया बड़ी जबरदस्त, मैं आपके सामने एक आया सुनाने वाला हूं, ये उन लोग के लिए है जो इस वक्त किसी ऐसी परेशानी से गुजरे, फाइनेंशियल इशू है कोई, उन्हें ये शिकायत है कि अल्लाह ने मुझे इतना नहीं दिया, मेहनत के बावजूद जाहिर है कि उन्हें लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना मेरे रिश्तेदार के पास है, मेरे दोस्त अहबाब के पास है। तो फिर उनके लिए रिप्लाई है अल्लाह ताला का, सूरह शूरा आयत नंबर 27, वलो बसत अल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर एंड इफ अल्लाह वर टू एनलार्ज द प्रोविजन फॉर हिज स्लेव्स दे वुड श्योरली रेबेल इन द अर्थ, दे वुड श्योरली रेबेल इन द अर्थ बट ही सेंड्स डाउन बाय मेजर एज ही विल्स वेरिली ही इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज स्लेव्स द वेल अवेयर द ऑल सीयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट बेनिफिट देम। लेट दैट सिंक फॉर अ मोमेंट। ये आयत शायद आप में से कई लोगों ने कभी ना सुनी हो, कभी इस पे गौर ना किया। अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह वर टू एनलार्ज द प्रोविजन फॉर हिज स्लेव्स, अल्लाह को पता है किसको कितना देना है, अल्लाह को पता है कि इस शख्स को अगर मैंने इससे ज्यादा दिया तो ये एरोगेंट हो जाएगा, ये बंदा आपे से बाहर हो जाएगा, ये दुनिया भी खो देगा, आखिरत भी खो देगा, अल्लाह को पता है किसको कितना हुसन अता करना है, अल्लाह को पता है किसको कितनी औलाद देनी है, अल्लाह को पता है कि फलाने शख्स के लिए औलाद आजमाइश है तो कब देनी है, किसको बेटा देना है, किसको बेटी देनी है, किसको कुछ भी नहीं देना, ये सब अल्लाह सुभान व तआला ने जो है वो एक प्रॉपर जो है वो डिक्री के मुताबिक सेट किया हुआ। तो इसलिए मांगना ना छोड़िए, मांगना ना छोड़िए, मैं ये नहीं कह रहा मांगना छोड़ दीजिए, मांगना ना छोड़िए, लेकिन अल्लाह की तकदीर से राजी हो जाइए, अल्लाह की तकदीर पे शिकायत मत कीजिए। अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है आपको कितना पैसा देना है, अल्लाह को पता है आपको कितना माल देना है, अल्लाह को पता है कि क्या वो आपकी जिंदगी में इंसिडेंट्स हैं जिनसे अल्लाह ने आपको अवॉइड कराना है और जिनको, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको गुजारना है। तो अल्लाह सुभाना व ताला के आगे सबमिट कर दीजिए। अल्लाह कहते हैं कि इन्नहु बि इबादी खबीरुम बसीर, के बेशक तेरा रब अपने बंदों के बारे में खबीर है, वेल अवेयर है, बसीर है, देखने वाला है, उसे पता है कि इनको क्या चीज बेनिफिट करेगी। तो देखिए, हम खुद से बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी टेंशन्स पालते हैं तकदीर को क्वेश्चन करके, मेरी फलानी जगह शादी क्यों हुई, मुझे ऐसा घराना क्यों मिला, मैं इस जगह पैदा क्यों हुआ, मैं इस कंट्री में पैदा क्यों हुआ, मेरी ये जॉब क्यों लगी, मेरा पैशन तो कुछ और था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। बात असल में ये है समझने की कि अगर हम यही टेंशनें पालते रहेंगे और इन्हीं चीजों पर बैठकर सोचते रहेंगे, या तो है ना कि आप एक सोल्यूशन निकालें, भाई ठीक है आपका एक जगह रिश्ता हो गया, आपको रिश्ता नहीं पसंद आ रहा, आप बहुत ही तंग आ चुके हैं, आप इतना तंग आ चुके हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है, तो सोल्यूशन ये है कि वहां से निकला जाए। लेकिन आप कंपैरिजन की बेसिस पे दूसरों की लाइफ को देखते हुए एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन अपने अंदर लाए कि उसके घर में तो फलाने ब्रांड का फर्नीचर है, मेरे घर में तो वो फलानी जगह का फर्नीचर है, उसके घर में डेकोरेशन पीसेस देखो, उसके घर में बर्तन चेक करो, उसके घर में जो है वो फानूस कितना जबरदस्त है, उसके घर में पर्दे कितने जबरदस्त हैं, तो ये क्या मेरे पास वो लाइफस्टाइल ही नहीं है। वो लोग बहुत खुश हैं, मियाँ बीवी बहुत खुश नजर आते हैं, मेरी मैरिटल लाइफ ऐसी क्यों चल रही है? तो ये सोच और बिला वजह परेशान होना कंपेयर करके, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी, ये आपको सिर्फ डिप्रेशन का ही मरीज बनाएगी, ये फिर आपको नींद की गोलियां खानी पड़ी हैं, फिर जाहिर है कि बीमारी लग जाएगी आपको, बीमार हो जाता है इंसान ये चीजें सोच सोच के। तो ये आयत पे कभी गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क मुतय्यन किया हुआ है। बाकी ये कि रिस्क बढ़ाने के तरीके भी हदीस में मौजूद है, सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, आप रिस्क बढ़ाना चाहते हैं सिला रहमी कीजिए, आप रिस्क बढ़ाना चाहते हैं सूरह नूर से साबित है, सूरह नूर से वाजे है, मैं जो एग्जैक्ट आया नहीं पता, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर सेशन एंड होने से पहले आपको एग्जैक्ट रेफरेंस दूस आएगा। सूरह नूर से साबित है, जो बंदा लोगों के दुख बर्दाश्त करता है, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए लोगों के दुख बर्दाश्त करता है, रिटेलिएट नहीं करता, अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाता है। सूरह नूर से साबित है, जो बंदा इस्तगफार करता है अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ाता है बहुत ज्यादा, जो बंदा उस बाबरकत टाइम में काम करता है, जाहिर है जब रिस्क अल्लाह ताला ने डिवाइड करना है तो सुबह का जो टाइम है, डिवाइड से मेरी यहाँ पे मुराद है जब बरकत का टाइम जो है तो तब रिस्क पड़ता है। तो इसलिए रिस्क बढ़ाने के तरीके भी हैं, तो फाइंड आउट दोज वेज, इल्म हासिल कीजिए। तो जिंदगी का जो फलसफा है, बहुत से लोग जिंदगी गुजार देते हैं गलत फलसफे के बेसिस पे, फूल्स पैराडाइज में, स्पेशली हमारे नौजवान मूवीज देख देख के, मूवी एक्टर्स को देख के जो है वो समझते हैं कि मैं भी जो है वो ऐसे कर लूंगा। जैसे आजकल ये टिकटॉक का जो फितना है, हमारे नौजवान टिकटॉकर्स को देखते हैं, वो पढ़ाई को इग्नोर करके, जो एक्चुअली वैल्यूएबल चीज है, वो पढ़ाई को कैरियर को इग्नोर करके समझते हैं कि मैं भी दो टिकटॉक वीडियोस बना के सिंगर बन गया हूँ, एक्टर बन गया हूँ, तो जाहिर है कि वो अपने आप को सिंगर और एक्टर समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं भी सिंगिंग और एक्टिंग का कैरियर परसू करूंगा। लेकिन जब वो इस गलीज दुनिया में एंटर होते हैं, मैं ये मीडिया की दुनिया को गलीज दुनिया ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें वाजे हैं कि ये वर्ल्ड किस तरह का वर्ल्ड है, मीडिया का जो वर्ल्ड है, एंटरटेनमेंट का जो वर्ल्ड है, अल्लाह बचाए, जब वो इसमें एंटर होते हैं तो जाहिर है कि दे कम टू नो कि ये सब मिराज था, ये सब धोखा था। और जब वो डर्टी पॉलिटिक्स फेस करते हैं, और जब वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देखते हैं वहां पर, तो डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये है वो मिराज, ये है वो फॉल्स वर्ल्ड व्यू। तो वर्ल्ड व्यू जो कुरान हमें देता है वो क्या है, और इसी वर्ल्ड व्यू के साथ हमने जिंदगी बसर करनी है दुनिया की जिंदगी के हवाले से, वो ये है चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 39, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ एंड दैट मैन शैल हैव नथिंग बट व्हाट ही और शी स्ट्राइव्स फॉर। तो अब देखो अपनी कोशिशें, अगर तो तुम्हारी कोशिशें अल्लाह तक पहुंचने की हैं तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी कोशिशें अल्लाह को इग्नोर करके लोगों को खुश करने की हैं तो फिर कर लो, और अगर तुम्हारी कोशिशें आखरत को इग्नोर करके दुनिया पाने की हैं तो फिर वो भी कर लो, और फिर देख लो उसका रिजल्ट, देख लो फिर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करते हो, दुनिया भी मिल जाएगी। तुम अरबपति बनना चाहते हो, बन जाओगे, लेकिन उसके बाद बताना कि क्या खुश हो, क्या सेटिस्फाइड हो, ये है असल सवाल। तो अल्लाह ने जिंदगी का फलसफा बता दिया, इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। तो ये देखिए कि आप किस चीज की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, क्या हम हमारी कोशिशें ठीक हैं, क्या हमारी जो हमारे जो एंड गोल्स हैं वो ठीक हैं। पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं, अगर एंड गोल ये है कि ऐ मेरे रब मैं बहुत सारी ज़कात दूंगा हर साल, मुझे माल अता कीजिए, मैं गरीबों की मदद करूंगा, ऐ मेरे रब मुझे माल अता कीजिए, मैं अपने घर वालों को हलाल रोजी खिलाऊंगा, एंड गोल अच्छा है, तो लिहाजा जो विश किया वो मिल भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो पहला रूल कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, वेरी प्लेन एंड सिंपल। तो जो शख्स बुराई की कोशिश करेगा उसे बुराई मिलेगी, जो बुरे दोस्तों की कोशिश करेगा बुरे दोस्त मिल जाएंगे, जो अच्छाई की कोशिश करेगा अच्छाई मिल जाएगी। दूसरा रूल, लकद खलकना अल इंसान फी कबद, सूरह बलद चैप्टर में 90 वर्स नंबर 4, कि बेशक हमने इंसान को कबद, फी कबद, हमने टॉयल और स्ट्रगल मुश्किल में पैदा किया, टॉयल और स्ट्रगल में पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने वो फॉल्स इमेज हमारा जो हॉलीवुड बॉलीवुड और अमेरिकन ड्रीम ने हमें दिया हुआ है कि जिंदगी खा ले पी ले जीले का नाम है, जिंदगी ऐश ऐश करने का नाम है, जिंदगी पार्टी करने का नाम है, जिंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लो बस पार्टी करो, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ब्रेक होता है जब हम इस आयत पे गौर करते हैं कि नहीं, जिंदगी बेड ऑफ रोजेज नहीं है। अगर आपने चाहते हैं आपके बच्चे कल को कामयाब हों इस दुनिया की जिंदगी में, तो उनकी ट्रेनिंग ऐसे कीजिए, उनको डिसअपॉइंटमेंट से डील करना सिखाइए, उनको ये सिखाइए कि जिंदगी में सॉरी उनको ये सिखाइए कि जिंदगी में हर चीज नहीं मिल जाती, कभी कभी जिंदगी में बहुत सी चीजें नहीं भी मिलती, उन्हें सिखाइए कि जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, बहुत सी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं, और जाहिर है बहुत सी ख्वाहिशें पूरी भी होती हैं। तो लकद खलकनल इंसान फी कबद, हमने इंसान को स्ट्रगल में टॉयल में पैदा किया, इसलिए ट्रेनिंग करो, ये टॉयल है स्ट्रगल है, ट्रेनिंग नहीं होगी तो पीछे रह जाओगे, ट्रेनिंग नहीं होगी तो गलत ट्रैक पर चल पड़ोगे, ट्रेनिंग नहीं होगी तो ट्रैक पर चलते चलते रुक जाओगे, हिम्मत हार दोगे। और यही तो इबलीस चाहता है, यही तो तुम्हारा दुश्मन शैतान चाहता है कि ये अल्लाह तक पहुंचे ही ना, ये बीच में ही हिम्मत हार दे, ये बीच में ही गमजदा होकर बैठ जाए, इनको गम इस तरह से घेर ले, इनको दुनिया के स्ट्रेसेस इस तरह से घेर ले कि ये अब चल ही ना सके, ये आगे बढ़ ही ना सके। तो लकद खलकना अल इंसान फी कबद, ट्रेन करो अपने आप, कैसे ट्रेन करो? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, ताकत पकड़ो स्ट्रेंथ पकड़ो सबर में नमाज में। अब जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता उसमें कहां से ताकत आएगी ये इस आयत पे अमल करने की, लकद खलकना अल इंसान फी कबद, वो कैसे इस ट्रॉयल और इस स्ट्रगल से बहुत अच्छे से गुजरेगा? नमाज में सबर में स्ट्रेंथ पकड़ो, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नल कुलूब, कर दिया ऐलान अल्लाह ने, अब जो मर्जी तुम जो है वो ट्राई करते फिरो, ड्रग्स ट्राई करो, म्यूजिक ट्राई करो, फॉल्स एंटरटेनमेंट ट्राई करो, लोगों की झूठी तारीफें ट्राई करो, जो मर्जी करते फिरो, लेकिन एंड में तुम यहीं पर आओगे, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नल कुलूब, दिल तुम्हारा यहीं पे इत्मीनान पाएगा। तो इसलिए फाइंड आउट दोज वेज टू ट्रेन योर सेल्फ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ इन दिस डिफिकल्ट पाथ। तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए डिफिकल्ट पाथ है, ओके? दुनिया की जिंदगी, हमारे नबियों ने भी डिफिकल्ट जिंदगी गुजारी है, अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदों ने अगर डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए बात यह है कि डिफिकल्ट लाइफ का ये मतलब नहीं है कि हर वक्त टेंशन में, हर वक्त डिप्रेशन में, डिफिकल्ट लाइफ से मुराद है कि कुछ ना कुछ मुश्किल आएंगी, डेफिनेटली आएंगी हक के रास्ते पर जब चलेंगे। और फिर तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नासी वला यालमु अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु, सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3, आई बिलीव इट इज वर्स नंबर 139, लेकिन आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा ट्रांसलेशन। हम लोगों पर रात और दिन लाते हैं, दिन बदलते हैं, कभी रात है फिर दिन है, जाहिर है फेरते हैं दिन और रात। ताकि हम जान सकें कि इनमें ईमान लाने वाला कौन है। और इस आयत का जो बैकग्राउंड है बड़ा ही खूबसूरत है। गजवा उहद में जो मुसलमानों को ठोकर पहुंची, शिकस्त मैं नहीं करूं कहूंगा, शिकस्त नहीं थी वो, बस लॉस था। जो भी लॉस हुआ, जो भी ठोकर पहुंची, अल्लाह ताला उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं कि ये ठोकरें जरूरी हैं लेसन सीखने के लिए। कुछ इंजरीज, कुछ जख्म जरूरी होते हैं ताकि कल को आप किसी बैटल में जाओ, आप किसी सिचुएशन में आओ, तो उन जख्मों की तरफ जब देखो तो आपको फख्र हो कि मैं पीछे बैटल्स लड़ के आ रहा हूं, मुझे जख्म लगे हुए, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं। इसीलिए माँ बाप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, तो माँ बाप की बात सुनने में ही वो जो एक कह लें अकलमंदी है, क्योंकि वो इंजर होकर आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला लोगों पर दिन फेरते हैं, कभी दिन है कभी रात है, कभी खुशी है कभी गम है, कभी फतह है कभी शिकस्त है, कभी ठीक चल रहे हैं कभी आउट ऑफ ट्रैक भी होंगे, कभी ईमान हाई है कभी ईमान बहुत लो है, कभी लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी लगता है कि जिंदगी बस कुछ भी नहीं, खत्म हो गई जिंदगी। क्यों? वलियालमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि हम देख सकें तुम में से ईमान वाला कौन है, कौन जमा रहेगा, कौन शुक्र करेगा, कौन तवक्कल करेगा, कौन जो है वो अल्लाह को याद करेगा। अल्लाह कहते हैं मुझे याद रख, मैं तुझे याद रखूंगा, देयर फॉर रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू, और मेरी शुक्र गुजारी कर और मेरा कुफर कभी ना कर। सूरह अल बकरा वर्स नंबर 153, मेरी शुक्र गुजारी कर और मेरा कुफर मत कर। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। जो पहली बात, जो पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे की, वो सबसे पहले ये थी कि द रीज़न हमारी जिंदगियों में जो मुश्किलात आ रही हैं, जो कि आनी हैं, जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते जाते हैं, शादी होती है उसके अलग चैलेंजेस हैं, बच्चे पैदा होते हैं उनके अलग चैलेंजेस हैं, बच्चों की तरबियत करने के अलग चैलेंजेस हैं, औलाद के अलग चैलेंजेस हैं जाहिर है, फिर बिजनेस करना है, जॉब करनी, उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वर्ल्ड व्यू अगर ठीक है आपका, तो इंशाल्लाह इन चैलेंजेस से बहुत अच्छे से आप गुजर जाएंगे। और वो वर्ल्ड व्यू हमने बड़ी डिटेल में आज डिस्कस किया कि वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको आयाज सुनाई अभी पीछे, जो तीन आयाज मैंने आपको सुनाई, और फिर मैंने आपको जो है वो तीन कैटेगरीज ऑफ पीपल बताए। तो आस्क योरसेल्फ, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप पहली कैटेगरी में हैं, दूसरी में हैं, कि तीसरी में हैं? तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे पहली कैटेगरी में ले आए, अल्लाह मुझे वो नॉलेज दें, मुझे वो सकत दें, मुझे वो टूल्स दें जिनको इस्तेमाल करते हुए मैं पहली कैटेगरी में आ जाऊं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि अब ट्रेनिंग कैसे करनी है इस ट्रैक पर चलने की, और एक फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, ताकि आपकी जो आने वाली जिंदगी है, जो हो गया हो गया, जो आने वाली जिंदगी है वो अच्छी गुजर जाए, सब्र से गुजर जाए, और अल्टीमेटली आप अल्लाह तक पहुंच जाए अच्छी हालत में, कल को आप अल्लाह को अपना चेहरा दिखा सकें इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर बीइंग विद अस, मे अल्लाह सुभान व तआला क्रिएट ईज इन योर लाइफ्स, अल्लाह ताला जितनी भी मुश्किलें हैं आपकी ज़िंदगी की उनको आसान फरमाएं। जिंदगी में मुश्किलें आनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त यही सोचते रहना कि मुश्किलें आनी, आसानी की दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, ये दुआ बहुत ज़्यादा किया करें। ये सुबह और शाम के अस्कार में से भी यह लंबी दुआ है, पूरी इंशाल्लाह आप अस्कार कार्ड्स में देखिएगा हिस्नुल मुस्लिम ऐप में, तो आसानी की दुआ किया करें। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व कीना अज़ाबन्नार, ये दुआ बहुत ज़्यादा किया करें। और परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला यू विल डू गुड, आप ज़िंदगी में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आपको वो फलसफा दिया हुआ है, बस उसको थोड़ा तराशने की तला जो है वो ज़रूरत है, ज़रा उस पे अमल करने की ज़रूरत है, ज़रा उसको मज़ीद जो है वो फिरोलने की ज़रूरत है और उसको अमल में लाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह ताला। यू विल टेक अ फ्रेश स्टार्ट। सो विद दिस, जज़ाकअल्लाह खैर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दुआ में याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।